लीचियासना कोवळे से उनमी सुर नाही संगती एक तरी धुन मी ज्यात डोका वेन मी ते मनाचे बिंब मी जन्म हे लावेल हा ते उसासे चिंब मी नाव नाही जास काही तो नोखा रंग मी जो पुरेल जन्म सारा तो सोबतीचा चंग मी मी चिमग व्यालो गोटा पुरिया आलो मी चिमग व्यालो गोटा
एक घने जंगल में पांच अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति जा रहे थे और जाते जाते वो पांचों रास्ता भटक गए। उसमें से एक ने कहा कि मुझे अंदर से स्फूर्णा हो रही है कि राइट साइड जाऊं। दूसरे ने कहा मुझे लग रहा है कि लेफ्ट जाऊं। तीसरे ने कहा मुझे ऐसा लग रहा है सामने से कोई पुकार रहा है और मुझे सामने जाना चाहिए। चौथा कहता है कि मुझे लगता है जहां से आए थे वहीं वापस जाना चाहिए। और जो पांचवा होता है वो कहता है आप लोग यहीं ठहरो, मैं इस झाड़ पर चढ़ता हूं और देखता हूं कि इस जंगल से बाहर निकलने का छोटा सा रास्ता शॉर्टेस्ट वे कौन सा है। और जब तक वो पांचवा व्यक्ति वो झाड़ पर चढ़ता है तब तक ये चारों अपनी अपनी सोची हुई दिशा में चले जाते हैं। पहला राइट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा सामने, चौथा पीछे। और ये जो व्यक्ति होता है जो झाड़ पर चढ़ता है बहुत ऊंचाई से देखता है कि ये जंगल कहां तक है, ये जंगल कहां खत्म होता है, और ऊंचा जाता है और एक जगह उसे दिखाई देता है इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। नीचे देखता है तब तक उसके मित्र जा चुके होते हैं। वो नीचे आता है, सोचता है कि वो सब गलत थे, मैं ही राइट था और मुझे ही पता था कि रास्ता कहां से बाहर आता है इस जंगल से। तो वो सोचता है आई एम राइट, दे आर रॉन्ग, मैं राइट हूं, वो रॉन्ग थे चारों। परंतु कहानी और आगे बढ़ती है और धीरे धीरे ये पता चलता है वो पांचों ही राइट थे। पहला जो राइट की ओर जाता है वहां एक और घना जंगल और जंगली जानवर, और वो उनके साथ रहना सीख लेता है। उसके अनुभव में एक नया अनुभव शामिल हो जाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में कैसे जिया जाए। जो लेफ्ट जाता है बढ़ता है आगे और उसको बहुत सारे डाकू मिल जाते हैं जो उसे लूट लेते हैं, उसका सारा सामान ले लेते हैं और वो डाकू उसे अपने ही गिरोह में, अपने ही गैंग में शामिल कर लेते हैं। परंतु धीरे धीरे वो जो सारे डाकू होते हैं उनके हृदय में परिवर्तन चालू होता है इसकी वजह से। कंपैशन, दया, भूत दया प्रकट होती है हृदय में और वो सब के सब परिवर्तन हो जाते हैं। तीसरा जो आगे जाता है वो ऐसी नई जगहों को ढूंढता है जो कि आने वाली जो लोग हैं उसके पीछे जो आएंगे शायद कभी बाद में, उन्होंने कभी जाना नहीं था, सोचा नहीं था, क्योंकि उस मार्ग से आज तक कोई गया नहीं था। यह पहला व्यक्ति था जो उस मार्ग पर गया और जैसे ही वो गया उसे नए नए स्थान दिखे और उनकी खोज हुई, जिसकी वजह से दूसरों को भी फायदा हुआ। जो चौथा था जो पीछे मुड़ गया, उसने एक पगडंडी का निर्माण किया, एक नया मार्ग। उस जंगल में कोई नहीं आता था परंतु क्योंकि इस चौथे व्यक्ति की वजह से लोगों का वहां आना जाना चालू हो गया, इसलिए वो भी सही था। और पांचवा वो जो झाड़ पर चढ़ा था और जिसने द शॉर्टेस्ट वे ढूंढ ली थी, वो अब लोगों को उनके जीवन की समस्याओं से कैसे बाहर निकला जाए, द शॉर्टेस्ट वे क्या है वो बताता है। अर्थात पांचों ही राइट थे। ये कह देना कि मैं गलत हूं या वो गलत है या हम अब तक जो कुछ कर रहे थे सब गलत था, शायद ये भी सत्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य की जो खोज है वो संपूर्णता की खोज है और उसके लिए वो अनेक मार्गों से जाता है और शायद किसी का भी मार्ग गलत नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है, वी डू नॉट मूव फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, वी मूव फ्रॉम लेसर लाइट टू हायर लाइट। हम अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं, कम प्रकाश के ज्यादा से ज्यादा प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। तो शायद यहां हम सब जो बैठे हैं सबकी खोज एक ही है, परंतु सबके मार्ग अलग अलग है। एकम सत्य प्रबहुदा वदंती, उसे समझने का नजरिया, विधि सबकी अलग अलग है, परंतु पहुंचना सबको एक ही स्थान पर है। हर एक की प्यास एक ही है, और क्योंकि हम केवल ये शरीर नहीं पर कुछ और है जो आपने आज सुबह सुना होगा। वास्तविक परिचय हमारा केवल यह देह नहीं है, नचभाती भूत संगम पर कुछ और, वो जो आत्मा है, वो जो अनंत है, और ये जो आत्मा है वो अनंत है, और इस अनंत आत्मा की प्यास अनंत की प्यास है। इस अनंत आत्मा की प्यास केवल वो ही भर सकता है जो अनंत है। इस संसार का कोई व्यक्ति, इस संसार की कोई वस्तु, इस संसार का कोई वैभव, इस संसार का कोई भी संबंध आत्मा को की प्यास को बुझा नहीं सकता, क्योंकि आत्मा को कुछ ऐसी चीज चाहिए जो यहां नहीं है, और वो प्यास, वो थर्स्ट, वो भूख, वो खोज इसी जन्म में उसे पूरी करनी है। यात्स देही यात्स जन्मी। तो यहां आना एक बहुत बड़ा भाग्य है। जिस स्थान पर आप सभी बैठे हैं, सबसे पहले तो ये स्थान साधारण स्थान नहीं है। यहां पहुंचने के लिए बहुत बड़ा भाग्य चाहिए, क्योंकि शायद अब तक जो हम भटक रहे थे, शायद अब तक जो यहां वहां ढूंढ रहे थे, अब तक वो जो प्यास थी पूर्ण नहीं हो पा रही थी, उस प्यास का आगाज शुरुआत यहां से होगी। और कईयों के लिए केवल यहां आना ही जीवन परिवर्तन था, तो वो कौन सी प्यास है, वो कौन सी भूख है, वो क्या आत्मा को चाहिए जिसे पाकर वो तृप्त हो जाए, उसकी आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इस संसार की कोई भी चीज, जैसे कहा, आत्मा को भर ही नहीं सकती, आत्मा खाली ही रह जाती है हमेशा के लिए। वो कौन सी प्यास है, सुनते सुनते अपने ही जीवन में झांकना है, अपने आप को देखना है, जैसे कोई विशाल पर्दा है, उस पर्दे पर अपने जीवन के सारे दृश्य देखते जाना है। मराठी में एक शब्द है सिंहावलोकन, अर्थात सिंह जो होता है पीछे मुड़कर देखता है, इंग्लिश में कहते हैं रेट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, खुद अपने आप को देखना, अपने जीवन को देखना, अपने अंदर ही झांकना, मैंने क्या खोया है, क्या पाया है, कहां जा रहा हूं, किस ओर जा रहा हूं, क्या जो करना है वही कर रहा हूं या कुछ और कर रहा हूं। आत्मा की प्यास किसी और चीज की है, परंतु मैं किस चीज में लगा हुआ हूं। डू आई नीड टू स्टॉप, क्या मुझे रुकने की आवश्यकता है, या ऐसे ही बेधुंद दौड़ता रहूं, दौड़ता रहूं, दौड़ता रहूं। वो समय कब आएगा जब अनुभव होगा चेतना को, मीची मजब यालो, आपुली या बोटी यालो, अपने ही गर्भ से मेरा ही जन्म हुआ है, ये अनुभव कब होगा। ऐसी आत्मा की 16 प्रकार की प्यास है जिसकी हम चर्चा करेंगे। आत्मा को वो क्या चाहिए और वो उसे कहां ढूंढ रही है। जैसे किसी राज्य में अपने एक राजा ने अपनी इकलौती बेटी को एक नेकलेस दिया गोल्ड डायमंड का, और वो नेकलेस, वो कंठहार इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि वो राजकुमारी उसके प्यार में पड़ गई। दिन रात उसी नेकलेस को, उसी हार को देखती रहती। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो हार खो गया। वो राजकुमारी बेचैन हुई कि कहां है हार। राजा ने सैनिक दौड़ाए परंतु वो हार कहीं ना मिला। घोषणा हुई, जो हार ढूंढ के देगा उसे पारितोषिक दिया जाएगा। बहुत ढूंढा, कहीं पर भी हार नहीं था। किसी ने कहा शायद कोई पक्षी उठाकर ले गया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, परंतु वो हार नहीं था। और रानी, वो राजकुमारी बहुत दुखी थी। एक युवक रास्ते से जा रहा था और वहां एक बहुत गंदा सा तालाब था, और जाते जाते उसे दिखता है कि उस तालाब में कोई वस्तु चमक रही है। उसे लगता है हो ना हो यही वो हार है, अगर ये हार मिल जाए तो बहुत बड़ी बख्शीश मुझे मिल जाए। वो उस तालाब के पास जाता है, हाथ डालता है उसमें, परंतु हाथ में कुछ नहीं। बाहर निकालता है, थोड़ी देर के बाद देखता है वस्तु फिर भी चमक रही है। फिर से हाथ डालता है, परंतु वहां कुछ भी नहीं। हाथ पटकता है, फिर भी कुछ नहीं है। बाहर निकलता है, देखता है वस्तु अब भी चमक रही है। थोड़ी देर के बाद उसमें उतर जाता है, पानी बहुत गंदा है, बहुत जोर से पटकता है हाथ पैर, परंतु हाथ में कुछ नहीं, मिट्टी कीचड़। बाहर आता है, फिर भी वस्तु चमक रही है। उदास होकर सोचने लगता है यह है क्या। और वहां से एक योगी, एक सन्यासी जा रहा होता है। वो कहता है क्या हुआ। ये सोचता है ऐसी बातें किसी को बताई नहीं जाती है, साधु है, पर साधु का भी क्या ठिकाना। हार की बात सुनकर उसका भी दिमाग घूम जाएगा। साधु कहता है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पहले तो कहता है नहीं नहीं, बाद में कहता है यहां की राजकुमारी का हार खो गया है और सामने हार दिखाई दे रहा है, चमक रहा है, यही हार है, और मैं उसे हाथ डाल रहा हूं पर हाथ में नहीं आ रहा है। वो साधु कहता है हार नीचे नहीं, ऊपर झाड़ पे लटका हुआ है। हार नीचे नहीं है, हार कहां है, ऊपर। जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो ऊपर लटका है, और जहां हम खोज रहे हैं वो नीचे। तो ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जो है तो ऊपर परंतु हम खोज नीचे रहे हैं। है तो प्यास आत्मा की, अनंत की, परंतु उसे नीचे खोजा जा रहा है, और वो नीचे कभी भी नहीं मिलेगी। सारा जीवन व्यक्ति उसमें लगा देता है परंतु नहीं मिलता है। किसी साइंटिस्ट ने लिखा है, आई हैव स्पेंट माई लाइफ इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, आई हैव स्पेंट माई लाइफ इन रिसर्चिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लाइफ आई फील लाइफ हैज स्लिप थ्रू माई फिंगर्स। सारा जीवन एटम्स मॉलिक्यूल्स की खोज में लगा दिया, अनुसंधान में लगा दिया, परंतु जीवन की शाम अब हो रही है, जीवन का अंत अब जब है, तब ऐसा क्यों लग रहा है कि हाथों से जीवन ही पिसल गया, जैसे हाथ में कुछ भी नहीं है, आत्मा रिक्त है, स्पिरिचुअल वैक्यूम, रिक्तता, एम्प्टीनेस। व्यक्ति है, वैभव है, धन है, संपत्ति है, पद है, पोजीशन है, समाज में बहुत इज्जत है, पर आत्मा खाली है। शायद जो करना था वो नहीं किया, शायद कुछ और था, जो पाना था वो नहीं पा सके। तो ऐसी लगभग 16 बातें हम देखेंगे। सबसे पहली, आत्मा की प्यास प्रेम की है, परंतु उसे प्रेम क्या ये पता ही नहीं। वो मोह को ही प्रेम कहता है, और प्रेम और मोह तो दो अलग अलग चीजें हैं। मोह में मालकियत है, मोह में तुम गुलाम मैं मालिक, मोह में पजेसिवनेस है, तुम, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी वस्तुएं मेरी। प्रेम मालकियत से पार है। मोह की जड़ें जमीन में है, प्रेम आकाश में है। आत्मा की सबसे बड़ी सबसे पहली प्यास है कि आत्मा को प्रेम चाहिए और वो प्रेम को व्यक्तियों में ढूंढता है। इससे प्रेम मिल जाए, उससे प्रेम मिल जाए, यहां से मिल जाए, वहां से मिल जाए, और संसार के हर व्यक्ति से कभी ना कभी धोखा और दुख और दर्द और पीड़ा ही मिलती है, क्योंकि सभी संबंध स्वार्थ पर खड़े हैं। सुरनर मुनि सब की हरीति, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। यहां सभी स्वार्थ के आधार पर प्रीत करते हैं। सुर नर मुनि सब, वो प्यास अधूरी रह जाती है और व्यक्ति अपनी वासना को ही प्रेम कहता है। परंतु वो प्रेम नहीं। तो आत्मा अनंत है और अनंत की प्यास अनंत की है, और पहली प्यास है प्रेम की, और वो प्रेम है ईश्वरीय प्रेम, प्रभु प्रेम। केवल ये प्रभु प्रेम जो ऊपर है वही इस आत्मा को भर सकता है। वो जो नीचे है वो तृष्णा है, इच्छा है, वासना है, देह है, और देह का लगाव है, देह का मोह है, देह के भोग, प्रेम नहीं। जब तक आत्मा को परिचय नहीं हो जाता वो कौन है, जब तक आत्मा को ये नहीं पता चल जाता कि इसका अलौकिक संबंध किसके साथ है, और वो ईश्वरीय प्रेम चेतना में नहीं भरता और आत्मा तड़पती नहीं उस प्यार में, तब तक पूर्तता नहीं आती। किसी संत ने लिखा है, जितना प्रेम एक मां अपने बेटे से करती है प्लस एक लोभी व्यक्ति धन से करता है प्लस एक कामी व्यक्ति देह से करता है, ये तीनों प्रेम एक हो जाए और प्रभु की ओर डायरेक्ट हो जाए, तब भगवान प्रकट होंगे, तब उसका साक्षात्कार होगा। प्राणः सर्वथा जाहु पाहे, ऐसी चेतना की अवस्था हो तब आत्मा तृप्त होती है, तब उसकी जो प्यास है वो मिटती है। तो सबसे पहली चीज है प्रेम। मनुष्यों से बहुत प्रेम किया, अब उससे करो जो प्रेम का सागर है। मनुष्यों से बहुत समीपता सामीप्य बनाया, अब उसके समीप जाओ कि जिसके पास जाकर, जिसको पाकर, जिसको मिलकर और सब कुछ अपने आप आ जाएगा, कुछ भी और पाने की आवश्यकता नहीं। जीसस क्राइस्ट के शिष्य जीसस क्राइस्ट के पास आकर कहते हैं, तुम कहते हो संदेश दो पर हमारे पास चीजें नहीं है, वस्तुएं नहीं है, कैसे हम जाएं, कैसे क्या कहे लोगों से। वो कहता है, सी की फर्स्ट किंगडम ऑफ गॉड एंड इज राइटियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू इट। पहले प्रभु को ढूंढो, पहले परमात्मा का राज्य को ढूंढो, एंड ऑल दीज थिंग्स संसार की सारी वस्तुएं, वैभव, सुख, पैसा, धन, संपत्ति, संबंध, सब कुछ संसार का जो है शैल बी एडेड अनटू इट, एड हो जाएगा। बट सी की फर्स्ट किंगडम ऑफ गॉड, सबसे पहले प्रभु का राज्य प्राप्त करो। एक इंग्लिश ऑथर ने लिखा है, ही हु गिव्स टू गॉड सेकंड प्लेस इन लाइफ गिव्स हिम नो प्लेस। जो अपने जीवन में परमात्मा को दूसरे स्थान पर रखता है वो उसे कहीं पर भी नहीं रखता। इतना भटके संसार में आत्मा भूखी और प्यासी ही रही, क्योंकि उसकी प्यास सांसारिक प्रेम की नहीं है, उसकी प्यास ईश्वरीय प्रेम की, अलौकिक प्रेम की, परमात्मा प्रेम की है, डिवाइन लव, ईश्वरीय नशा, ईश्वरीय खुमारी। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, दिन रात नानक को ये खुमारी, ये नशा, ये इंटॉक्सिकेशन चढ़ा रहता है। इस प्रेम को बढ़ाना है। दूसरी मिलन, आत्मा की दूसरी प्यास कौन सी है? मिलन की प्यास। सबसे गहरे में अगर देखो ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में सबसे गहरी जो प्यास है वो है यूनियन की प्यास, मिलने की। ऊपर से जो कुछ दिख रहा है वो केवल परछाई मात्र है, सबसे डेप्थ में उसको क्या चाहिए? यूनियन। परंतु सबसे बड़ी भूल, हार ऊपर लटका है, व्यक्ति नीचे ढूंढ रहा है शरीर के यूनियन में, देह के मिलन में अनंत प्यासा ही रह जाता है। अनंत का मिलन अनंत से जब होगा तभी प्यास बुझेगी। द यूनियन ऑफ द इन्फिनिट विद द इन्फिनिट, द यूनियन ऑफ द सोल विद द सुप्रीम सोल, ये जो मिलन जब होगा तब ही प्यास भरती है। नहीं तो शरीर का जो मिलन है उसके बाद व्यक्ति दुखी ही रहता है, फ्रस्ट्रेटेड, सारा जीवन भोग विलास में डुबो कर भी मरते समय वंस मोर की कामना से ही मरता है, क्योंकि अतृप्त रहता है, अपूर्ण रहता है। आत्मा की प्यास है परमात्मा मिलन की, और आत्मा की प्यास है प्रभु प्रेम की। द डीपेस्ट डिजायर इज मीटिंग, इज यूनियन, इज योग, इज योगा। तो अपने जीवन को देखना है यहां बैठे बैठे कि अब तक का जो जीवन था किस किस से प्यार किया और क्या मिला, इन इन से प्यार किया, व्हाट वाज द रिजल्ट। अपने ही जीवन को देखना है कि अब तक ये शरीर जो कि सुबह सुना, हमारा वास्तविक स्वरूप है ही नहीं, मैं तो कुछ और ही हूं, एक अनंत चेतना, एक दिव्य चेतना। तीसरा, परमात्म छत्र छाया। मनुष्य ने इसकी उसकी छत्र छाया ली, सुरक्षा ली, परंतु सबसे बड़ी जो सुरक्षा है वो है परमात्म छत्र छाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चालू था, एक सैनिक अमेरिका का भाग रहा था, उसके पीछे बहुत सारे शत्रु दल के लोग बंदूक लेकर थे, बचना बहुत मुश्किल था, वो बहुत तेजी से भाग रहा था, भाग रहा था, भक्त था, भक्ति करता था, क्या करूं, कहां नहीं, कहां जाऊं, अब मरना निश्चित था। एक खंडर सा घर दिखता है, उस घर में घुस जाता है, वहां बहुत सारे कमरे हैं, कोई नहीं रहता, एक कमरे में घुस जाता है और वहां बैठकर सोचता है जीवन की अंतिम घड़ी आए, हे प्रभु कृपा कर, हे प्रभु रक्षा कर। अगर मैंने तुझे प्रेम किया हो या तेरी भक्ति की हो तो मेरी रक्षा कर। देखता है उस दरवाजे पर एक मकड़ी आ जाती है और वो अपना जाल बुनना चालू करती है। वो देखता है और सोचता है क्या ये मकड़ी मेरी रक्षा करेगी। तब तक जाल बुनना पूरा हो जाता है और सैनिकों की आवाज ठप ठप ठप, बहुत सारे सैनिक इधर उधर घेर लेते, पकड़ो 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 मारो, इस तरह की आवाजें आने लगती है, सभी के हाथ में बंदूकें हैं और बस ये अकेला है, अब इसकी मृत्यु सामने है। सब अलग अलग कमरों में घुसते, बहुत बड़ा घर है, और जैसे ही उस कमरे में आने की कोशिश करते जहां ये है, वो देखते हैं यहां तो मकड़ी का जाल है, कोई अंदर कैसे जा सकता है, नॉट पॉसिबल। मकड़ी का जाल है मतलब बहुत समय से अंदर कोई भी गया नहीं है, और वो व्यक्ति वो सैनिक वापस लौट जाते हैं। इस सैनिक ने अपनी जीवन कहानी लिखी कि कैसे मुश्किल समय में प्रभु ने मेरी रक्षा की। आत्मा की सबसे गहरी प्यास में तीसरी प्यास है परमात्मा छत्र छाया की प्यास। कहते हैं मोहम्मद पैगंबर जब रेगिस्तान में तपती रेगिस्तान में चलते थे, धूप 40 के ऊपर टेम्परेचर, कहा जाता है ऊपर से बादल ऊपर ऊपर चलते थे, वो किसी और को दिखाई नहीं देते थे, केवल उनको दिखाई देते थे, छत्र छाया। चौथी प्यास आत्मा की है परमात्मा साथ की प्यास, कंपेनियन, डिवाइन कंपेनियन, सुप्रीम कंपेनियन। किसी ने बहुत अच्छी चीज लिखी है कि व्हेन आई फॉरगेट दैट गॉड इज माय सुप्रीम कंपेनियन आई फील लोनली। मैं तब तब अकेला महसूस करता हूं जब ये भूल जाता हूं कि परमात्मा मेरा साथी है, जब भगवान मेरा साथी है ये विस्मृति हो जाती है तो फिर अकेलापन आता है। इसको साथी बनाया, पति को साथी बनाया, पत्नी को साथी बनाया, दोस्तों को साथी बनाया, पर आत्मा अभी भी अतृप्त है क्योंकि जब तक उसको प्रभु साथ न मिले वो अपूर्ण नहीं है। और उसी परमात्मा साथ का अनुभव करने हर एक ये समझे हम इस स्थान पर पहुंचे हैं। अगला उसी से जुड़ा है परमात्मा मदद। एक बताया था रक्षा छत्र छाया, दूसरी है मदद। इन द टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट नीड वी आर ऑलवेज अलोन। जब हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है किसी व्यक्ति की, उस समय वो व्यक्ति वहां नहीं होता है, तब जो मदद आएगी केवल और केवल परमात्मा से ही मदद आएगी। और इस कैंपस में आप लोग और एक दो दिन है, डेढ़ दिन इस कैंपस में घूमना है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाओ और वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे सेवाधारी हैं जो सेवा कर रहे हैं, उनको पूछो कि आप लोग यहां किस लिए आए और कैसे आए। वो आपको ऐसा अनुभव सुनाएंगे कि कैसे भगवान ने उनकी मदद की और वो टर्निंग पॉइंट था जीवन का। कितने लोग हैं जिनको ये ईश्वरीय ज्ञान ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा जेल में प्राप्त हुआ। एक अनुभव अभी अभी लिख के आया था, यज्ञ की मैगजीन आती है ज्ञानामृत। एक महिला बहुत बड़ी कंपनी की मालिक, अचानक कुछ हो गया, फ्रॉड हो गया, कुछ उसने नहीं किया किसी और ने किया, परंतु वो पूरा ग्रुप के ग्रुप पकड़ा गया और वो सब जेल में। इतनी दुखी हो गई, पति नहीं है, बच्चे हैं, घर कौन देखेगा बच्चों को, और वो जेल में एकदम उदास, एक महीने में दुखी उदास, सोच रही है कि जीवन को समाप्त कर दूं जीवन लीला को। और उसी समय कुछ ब्रह्मा कुमारी बहनें आई, उन्होंने ज्ञान दिया और उस ज्ञान से जैसे नीची मजब यालो नया जन्म हुआ और वो अपने दुख से मुक्त हो गई। कर्म फिलॉसफी का पता चला, कर्म सिद्धांत का पता चला, क्यों ये चीजें हुई जबकि मेरा कोई दोष नहीं, उसके बाद भी मैं जेल में क्यों। बहुत सारी चीजें उसको समझ में आने लगी और शी बिकेम स्टेबल, एकदम शांत हो गई। अभी उसने मैगजीन में लिखा कि मैं तो इस माउंट आबू में पहुंची भी नहीं हूं, अब मुझे इंतजार है कब मैं पहुंचू, कब मैं जाऊं। अब उसको इंतजार है कब मैं जाऊंगी वहां पर, कब सेवा केंद्र पर जाऊं, कैसा होता है, उसे कुछ भी नहीं पता। परंतु ऐसी अलौकिक खुशी, ऐसी अलौकिक नशा कि मुझे जेल में बैठे बैठे ही भगवान का परिचय मिल गया, वो भगवान जिसे कोई भी नहीं जानता संसार में, जिसके बारे में केवल सिद्धांत है, जिसके बारे में हर धर्म कुछ कुछ अलग अलग कहता है, कोई भी उसे नहीं जानता। अवजानंती माम मुड़ा मानुषी तमाश्रित, हे अर्जुन जब मैं संसार में आता हूं अवजानंती माम मुड़ा, मूर्ख मुझे नहीं जानते। वो परमात्मा अब आया है और ये उसका अवतरण स्थान है। उसने हिमालय को नहीं चुना, उसने जेरूसलम को नहीं चुना, उसने अमेरिका जापान को नहीं चुना, उसने भारत में भारत को चुना और उस भारत में इस आबू की भूमि को चुना। और ये स्थान परमात्मा अवतरण भूमि है। एक दिन यहां सबको आना पड़ेगा, सबको जो अब दूसरे दूसरे शरीर में है, सारे संत, सारे योगी, सारे महात्मा, सारे धर्म स्थापक, जीसस क्राइस्ट, शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध, मोहम्मद पैगंबर, तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, सबको एक दिन इसी स्थान पर आना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर मुक्ति होगी सभी की। परमात्मा मदद। भक्ति मार्ग में भी वो भगवान मदद करता आया, अभी तो वो खुद आया है, किसी अवतार को नहीं भेजा, खुद आया है। परित्राणाय साधुनाथ विनाशाय च दुष्कृताम, ये कार्य करने वो अब प्रकट हुआ है। सुरनर विप्रसंत सुरधेनुहित प्रभुधरी विविध शरीरा, अब उसने यहां पर प्रकट किया है। उसके बाद में आत्मा की अगली प्यास है ज्ञान की प्यास। छठवी आत्मा की प्यास किसकी है? ज्ञान की। और अब तक हम जो कुछ ज्ञान जिसको समझ रहे हैं वो नीचे है, वो गंदला पानी है, उसमें हाथ डाल रहे और उसी को ज्ञान समझ रहे। ये ज्ञान वो ज्ञान नहीं, वो सूचनाएं हैं। ज्ञान तो कुछ और है, ज्ञान तो प्रज्ञा है, विजडम। और ज्ञान इस संसार में कोई नहीं दे सकता एक परमात्मा के सिवा, क्योंकि वही इस सर्कल से बाहर है, इस साइकिल से बाहर है जन्म मृत्यु के, बाकी सब इस साइकिल के अंदर है। एक परमात्मा ही है जो सत्य ज्ञान दे सकता है। सारे धर्म कब स्थापन हुए, सतयुग कब था, द्वापर कब था, त्रेता कब था, ये सारे साधु संत योगी महात्मा क्या है, परमात्मा के जो कॉन्सेप्ट है, सर्वव्यापी है नहीं है, ये अवतार क्या है, इतने धर्म क्यों है। देर आर 4200 रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, इस संसार में 4200 धर्म है। हर धर्म कहता है एवरी पॉटर प्रेजेस इज ओन पॉट, हर धर्म कहता है कि मैं जिसकी पूजा करता हूं वही भगवान है। और भारत में हर 100 किलोमीटर के बाद ये कौन है? अवतार। किसका? उसका। ये कौन है? दत्तात्रेय का अवतार। वो कौन है? उसका अवतार। वो कौन है? उसका अवतार। अवतार ही अवतार है, अवतारों का बाजार है यहां, इतने अवतार हैं यहां पर। परंतु भगवान कौन है किसी को नहीं पता, उसका परिचय वो खुद ही दे सकता है और कोई भी नहीं। तो आत्मा की प्यास किसकी है? ज्ञान की, सत्य ज्ञान की। सत्य ज्ञान क्या है? और वो सत्यम शिवम सुंदरम ही दे सकता है। अब तक हमने जो कुछ सुना शायद वो नीचे का पानी ही था, ऊपर हार तो अभी भी लटका है जो कि परमात्मा ज्ञान है। आत्मा क्या है? परमा जीव जगत ईश्वर, ये ज्ञान वही दे सकता है। ज्ञान पिपासा, ज्ञान की खोज, ढूंढना है ज्ञान है क्या। जब तक वो प्यास जागृत नहीं होगी, द थर्स्ट द क्वेस्ट, तब तक ज्ञान तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। ढूंढो उसको, सीक एंड इट शैल फाइंड, नॉक एंड इट शैल ओपन, सीक आस्क एंड इट शैल बी गिवन। ढूंढना पड़ेगा, खटखटाना पड़ेगा, तब मिलेगा ज्ञान। तो यहां आने का एक लक्ष्य ये रखना है कि आज से वो प्यास जैसे जागृत हुई है, मुझे जानना है ये है क्या, ये लोग कौन है, ये क्यों ऐसे करते हैं, यहां क्यों आ गए संसार की चमक धमक छोड़कर, क्यों ये ऐसा पहनते हैं, ऐसा खाते हैं, ये करते हैं, क्यों, व्हाट। एक्सेप्ट नहीं करना है कुछ भी, पर खोज करनी है। हम ये नहीं कह रहे इस स्टेज पर जो कुछ आपको सुनाया जाएगा सब स्वीकार कर लो, कुछ भी स्वीकार मत करो, सर्च, खोज करनी है, जस्ट अंदर ही अंदर एनालाइज करना है चीजों को। डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग बिकॉज इट इज सेड बाय समवन, डोंट एक्सेप्ट बिकॉज इट इज रिटन समवेयर, डोंट एक्सेप्ट बिकॉज इट हैज बीन हैलोड बाय ट्रेडिशंस, कहीं लिखा है, किसी शास्त्र में लिखा है, या किसी स्पीकर ने कह दिया, इस संस्था में यह सिखाया जाता है, इसकी वजह से एक्सेप्ट थोड़ी ना करना है। रिजेक्ट एवरीथिंग, सर्च, ढूंढना है और फिर प्राप्त करने की कोशिश करना है. ए इज इक्वल टू बी, रिजेक्ट कर दो, ए इज नॉट इक्वल टू बी, लेट स्टार्ट. और फिर जाओ 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 जाओ, शायद लास्ट में आ जाएगा हाँ ए इज इक्वल टू बी. जो साइंटिफिक अप्रोच है वही अप्रोच इधर ही. कोई आके कह दे तुम आत्मा हो, हम है ही नहीं आत्मा, हम क्यों माने. कोई कहे कुछ भी तो मान ले, डोंट एक्सेप्ट. सर्च, ढूंढो, ढूंढना है, खोज करनी है, अन्वेषण करना है. उसके बाद में आत्मा की अगली प्यास है गुणों की प्यास. जब भी हम देखते किसी में दिव्य गुण है, आकर्षण होता है उसकी तरफ. एक व्यक्ति है उसका अपमान किया गया सबके सामने, फिर भी शांत है, ऐसा लगता है जरूर इसमें कुछ तो है. कैसे सहन कर लिया इतना सारा. महात्मा गांधी भाषण कर रहे थे, इतनी बड़ी सभा थी, एक युवक खड़ा हो गया और गालियां देने लगा, तुम कायर हो, चले जाओ यहां से, तुमको मार देना चाहिए. उसी सभा में एक व्यक्ति बैठा था, पठान खान, अब्दुल गफार खान. उसने देखा कितनी बड़ी सभा के बीच अपमान हुआ है, फिर भी ये व्यक्ति अचलडोल है, जरा भी दुखी नहीं है, विचलित नहीं है, उद्विग्न नहीं है. और तुरंत जागृत हुआ कि इसमें कुछ तो है, सम पावर, सम सब्सटेंस ऑफ इसमें है. और वो आकर्षित हुआ और कहा तो उसका अनुयायी बन गया. और उसी को लोगों ने सरहद गांधी कहा एक दिन, फ्रंटियर गांधी, खुदाई खिदमतगार. What was that? दिव्य गुण, अनुशासन. देखते हैं किसी में बहुत अनुशासन है, आकर्षण होता है. देखते हैं किसी की वाणी में मिठास है, बोलती जे अर्णव पीयूषाचे. ऐसा लगता है कोई आकर्षण है. वो वाणी इस दुनिया की नहीं है, उसमें दिव्यता है, उसमें पवित्रता के और ब्रह्मचर्य के प्रकंपन है, वाइब्रेशंस है प्यूरिटी के जो खींचते हैं. चाहते नहीं है सुनना, परंतु हृदय को भेद कर अंदर जाती है. दिव्य गुण है. आत्मा की प्यास गुणों की है. यहां पे आपको 36 दिव्य गुणों की लिस्ट मिलेगी, अलग अलग जगह लगे हुए हैं. एक एक दिव्य गुण पर एक एक हफ्ता काम करना है. स्टार्ट विथ ए, एक्यूरेसी, बेनिवोलेंस, कोऑपरेशन, करेज, डिटर्मिनेशन, एंथुजियाज्म. एक एक दिव्य गुण, अगर जीवन में एक भी दिव्य गुण आ जाए तो सारे दिव्य गुणों को पीछे अपने साथ ले आएगा, इतनी पावर है दिव्य गुणों में. सहनशीलता, सहन जो करता है, बहुत पावर आ जाती है उसमें. तो कहा मैंने संत सोसी जगाचे आघात, जो जग के आघात सहन करता है उसमें पावर आ जाती है अपने आप. आत्मा की प्यास है गुणों की. अगला, आत्मा की प्यास है शक्तियों की. हर व्यक्ति चाहता है कि मैं शक्तिशाली बन जाऊं, कुछ मुझ में दिव्य शक्ति आ जाए या कुछ आ जाए, कुछ भी शक्ति, मेमोरी पावर आ जाए या कोई शक्ति आ जाए. कोई तो शक्ति चाहिए. संसार में अष्ट शक्तियां हैं, अष्ट सिद्धियां जिसको कहते हैं, सिद्धि स्वरूप. उसके सामने नतमस्तक होते हैं, प्रभु मुझे शक्ति दे, सिद्धि दे. हर आत्मा की प्यास है उसे शक्तिशाली बनना है, क्योंकि अभी आत्मा परकटी चिड़िया है, पंख टूटे हुए हैं उसके. The wings are clipped. क्या आत्मा फिर से शक्तिशाली बन सकती है? हां बनेगी. जैसे ही शरीर से डिटैच हो जाओ, शक्तियां बहने चालू हो जाएगी. शक्तिशाली बनने की विधि क्या है? शरीर से अलग हो जाओ. मैं आत्मा हूं. तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, डायरी पेन पेंसिल सब कुछ नीचे, स्थिर, रेड लाइट, संपूर्ण शरीर शिथिल। मन एकाग्र, बुद्धि स्थिर, शरीर की सारी हलचल समाप्त। देह के ललाट पर विराजमान चैतन्य की शक्तिशाली किरण मैं हूं। अत्यंत तेजस्वी चमकता सितारा मैं, ज्योतिर्मय आत्मा हूं। मुझ आत्मा से अंग अंग में शक्तियों का प्रवाह बह रहा है। शांत हूं, संसार के सभी चिंतन से परे। मैं शांत स्वरूप आत्मा, मुझ आत्मा से चहुओर शांति की किरणें फैल रही है। मैं एक शक्तिशाली चेतना हूं। सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान, अतुलित बलधामा मैं हूं। संपूर्ण चेतना भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित, ज्योतिर्मय आत्मा अंशंत। आत्मा शक्तिशाली बनना चाहती है और विधि है देह से डिटैच हो जाना, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना। आत्मा की अगली प्यास है वरदानों की प्यास। आत्मा ऐसा चाहती है कि उसे कुछ वरदान मिल जाए, कोई दिव्य वरदान, कोई दिव्य शक्ति मिल जाए। बहुत खुश होती है वो अगर ऐसा उसे कुछ मिल गया तो। हमें याद है जब हम MBBS में थे तो स्वामी मुक्तानंद के शिष्य आए थे सिद्ध योगा। एक प्रवचन चालू था जिसमें हम बैठे थे और प्रवचन पूरा हो गया, हमें पता नहीं था ये क्या है, हम खाली वहां जाकर बैठ गए थे। सब चले गए, हम भी जा रहे थे। उन्होंने कहा रुक जाओ और सामने बिठाया और बिठा के 10-15 मिनट तक दृष्टि दी। हमने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा शक्तिपात। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा तुम्हारे काम आएगी। एक है नयन दीक्षा, दृष्टि से शक्ति। एक है स्पर्श दीक्षा, स्पर्श करो और आत्मा एनर्जी ट्रांसफर करती है दूसरे में। तीसरी है मंत्र दीक्षा। तीन प्रकार की दीक्षा भक्ति मार्ग में है। तो हमने पूछा कि क्यों और ये है क्या? उन्होंने कहा शक्तियां, एनर्जीज कैन बी ट्रांसफर्ड। हर आत्मा चाहती है कि कोई वरदान मिल जाए, कोई शक्ति मिल जाए, परंतु वरदान बिना तपस्या के नहीं मिलता। और तपस्या और साधना ही है यहां आने के बाद का जीवन, वो ना रहे जो यहां आने के पहले का था। अब यहां के बाद का जीवन ये पॉइंट, टर्निंग पॉइंट हो जाए जीवन का, यहां पहुंचना। कितने बजे उठ रहे थे, अब कितने बजे उठेंगे? क्या कर रहे थे उठते ही, अब क्या करेंगे? दिन भर में क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे? अब यहां के बाद का जीवन संपूर्ण प्यूरिटी से भरा हो, स्वच्छता से भरा हो, निर्मलता से भरा हो। वो जो विकार है, वो जो तंग करते हैं, सताते हैं, अब वो ना रहे। अब जीवन कुछ और हो, कुछ नया हो। वो पूरा दिन आपके पास कल है। अंतर्मुक्ता की गार में, गुफा में बैठकर अपने ही जीवन का चिंतन करना है, मुझे करना क्या है, क्या मैं करूं, क्या वैसे ही चलता रहूं, क्या कुछ रुकने की आवश्यकता है? ये जो विकार है, जो मुझे तंग करते हैं, सताते हैं, इनसे मुझे मुक्त होना है। काम क्रोध निमले ठाई चे झाला स्वयमेव पांडुरंग। खुद ही ईश्वर स्वरूप हो जाए चेतना। जब ये सब निकल जाए उसमें से, आत्मा धीरे धीरे शुद्धि, शुद्धिकरण हो जाए, वरदान। उसके बाद में आत्मा की अगली प्यास है सेवा की प्यास। यहां आपने देखा होगा इतने लोग सेवा कर रहे हैं, इतने लोग काम कर रहे हैं, और हर कार्य इतना एक्यूरेट हो रहा है। कोई किसी को सुना किसी ने, कोई इंचार्ज है, कोई बॉस है, ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो, कोई किसी को कुछ नहीं कहता, अपने आप सब हो रहा है। कैसा है ना जादू? हजारों लोग आते, हजारों लोग चले जाते, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, प्रोग्राम हो रहा है, एक के बाद दूसरा लेक्चर हो रहा है, ये ग्रुप जा रहा है, दूसरा ग्रुप आ रहा है, अपने आप सब कुछ हो रहा है। कैसे? क्योंकि हर एक के अंदर एक भावना है। कौन सी? सेवा भाव। हो सकता है जिसे डाइनिंग हॉल में आपने वो टेबल साफ करते देखा, वो कोई आईएएस ऑफिसर हो, पर हर एक के अंदर सेवा भाव है और हर एक गुप्त बैठा है। इतनी महानताएं भरी है पर गुप्त है, क्योंकि नम्रता है, अहंकार नहीं है। थोर गर्व ना धरी अभिवाचा, हा स्वभाव उपकार पराचा। अहंकार नहीं है कि हम ये है हम वो है। तो आत्मा की प्यास है सेवा की। पैसे बहुत कमा लिए, आत्मा को अब निस्वार्थ कुछ करना है, तब उसकी प्यास बुझती है। हर चीज स्वार्थ पर आधारित, हर चीज लेन देन, हर चीज एक डील, हर चीज एक बिजनेस, हर चीज एक कमर्शियल। यहां पे किचन में जाकर देखो, इतनी सारी माताएं हैं, अनपढ़ है, उनको लिखना भी नहीं आता है, पढ़ना भी नहीं आता है, कुछ नहीं आता, ऐसी भी माताएं हैं यहां एक एक महीने से सेवा कर रही है। क्यों? भाव है सेवा, यज्ञ की सेवा, बाबा की सेवा, बस सेवा करना है, सेवा करना है। हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में ओपीडी में बाताएं आती है, उनके पास यहां आने के खाली जनरल बोगी के पैसे और जाने के पैसे। अगर उनको कहो भर्ती हो जाओ, एडमिट हो जाओ, कहती हमारे पास पैसे नहीं, हम यहां सेवा करने आए, बोझ होगा यहां अगर भर्ती हो गए तो, बोझ नहीं चाहिए हमको, वैसी दवाई दे दो तो जो देना है। अनन्य भाव है सेवा का, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, फॉर द गुड ऑफ मेनी फॉर द वेलफेयर ऑफ मेनी, वो बेहद का भाव यहां पर है, सर्वस्व त्यास अर्पीन। सेवा, तो जो लोग बहुत ही ज्यादा बिजी है और खो गए संसार के बिजनेस में, थोड़ा सा टाइम निकालना है और सेवाओं में लगाना है, तो ही आत्मा को असली खुशी और असली आनंद की प्राप्ति होती है। जो दुखी है, जो अनाथ है, जो उदास है, जिनका कोई नहीं है, जे का रंधले गांधले त्यासी मनेजो आपुले, जो अपना समझता है, द लॉस्ट द लोएस्ट एंड द लोवलीएस्ट, जिनका कोई भी नहीं है, द सर्विस ऑफ मैन एज इफ इट इज द सर्विस ऑफ गॉड, मानव सेवा नहीं माधव सेवा है, दैट स्पिरिट, दैट अवेकनिंग, दैट झील, दैट इंथुजियाज्म टू सर्व सेल्फलेसली ऑल द टाइम। तब आत्मा की प्यास बुझती है, संसार के पैसों के पीछे भागने से नहीं बुझती है। सेवा वो भी करो जितना आवश्यक है, बट डोंट कॉल यूर नीड एज ग्रीड, एज यूर ग्रीड एज नीड। ग्रीड है पर उसको व्यक्ति कहता है ये मेरी नीड है, नीड है ही नहीं, ग्रीड है वो जो उसे पागल करके घुमा रही है। स्टॉप स्टैच्यू, दिस इज द स्टॉपिंग पॉइंट। ये चिंतन का बिंदु है। अगली प्यास है आत्मा की दुआओं की प्यास। आत्मा को क्या चाहिए? दुआएं चाहिए। बहुत जिसके पास दुआएं है, हमारी जानकी दादी है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वो कहती है मुझे कुछ भी बीमारी होती है, इतनी आत्माओं की दुआ है, मैं अपने आप ठीक होती हूं, ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। शी इज 103 एज, सारे विश्व में चक्कर लगाया है दादी जान की, पर एक किताब लिखी गई है, सेंचुरी ऑफ सर्विस, एक इंग्लिश लेखिका ने यह किताब लिखी और उस किताब की प्रस्तावना में लिखा, प्रिफेस में, अगर ये लेडी जो अनपढ़ है, जिसको इंग्लिश बोलने नहीं आती, अगर ये लेडी कैन मेक अ परमानेंट हाउस इन अ सिटी लाइक लंडन, वेल देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर ऐसी महिला जिसको लिखना नहीं आता, जिसको इंग्लिश नहीं आता है, वो लंदन जैसी जगह पर अपना एक घर बना सकती है, तो इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। कुछ भी असंभव नहीं है। क्यों? दुआएं। जिसकी सेवा करो दिल से दुआएं निकलती है। सबको भोजन पसंद आया यहां का? कैसा है? धन्यवाद का भाव निकलता है उनके लिए जिन्होंने बनाया, सुबह 3 बजे उठकर चाय बनाई, वो माता है जो वहां बैठी है सर्व कर रही है, उन्हें तो पता भी नहीं आप लोग कौन है। निस्वार्थ, जब भी किसी की निस्वार्थ सेवा की जाती है तो क्या निकलता है वहां से? दुआएं निकलती है। बहुत पावर होती है दुआओं में। 1982 अमिताभ बच्चन घायल हुआ था, स्प्लिनिक इंजुरी, स्प्लिनिक रप्चर लीडिंग टू इंटेस्टिनल परफोरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन, अबाउट टू डाई, सारा देश प्रार्थना कर रहा था, दुआएं, ही वॉज सेव्ड। बैंगलोर यूनिवर्सिटी कैंपस की शूटिंग में स्प्लिनिक इंजुरी हो गई थी, सेव्ड, दुआएं। सबसे बड़ी कमाई है दुआओं की कमाई। जिसने बहुत दुआएं कमाई, हजारों लाखों आत्माओं की आशीर्वाद चल रही है साथ साथ सिर पर। अगली प्यास है आत्मा की अलौकिक सुख की प्यास। हम जो सुख ढूंढ रहे हैं वो इंद्रियों का सुख है, वो नीचे है, ऊपर अलौकिक सुख है जो परमात्मा में है। इसके लिए उसके समीप जाना है, उससे प्यार बढ़ाना है, वो कौन है ढूंढना है, कहां है ढूंढना है, क्या उसका परिचय, कहां वो रहता है, क्या है वो, उसके नजदीक जाना है। अगली प्यास है आत्मा की, अलौकिक खुशी की, खुशी। संसार में बहुत सारे कॉमेडी सीरियल्स है, कॉमेडी चैनल्स है, बहुत हंसाते हैं, रुलाते हैं, बट आत्मा का दुख वहीं रहता है। एक व्यक्ति दुखी है, सिनेमा देखने जाता है, 3 घंटा दुख भूल जाता है, वापस आता है, पर दुख तो वहीं है। वो दुख का को नष्ट नहीं करता, दुख की विस्मृति कराता है, जैसे दारू सिगरेट उसी तरह का काम वो करते हैं। आत्मा की जो प्यास है वो है अलौकिक खुशी की प्यास, और वो खुशी उसको केवल ऊपर जो हार लटका है वहां से आएगी, अध्यात्म से आएगी, अपने अंतर यात्रा से आएगी, बाहर से कभी नहीं आ सकती, क्योंकि बाहर वो है ही नहीं, वो यहां है अंदर। आत्मा की अगली प्यास है दृष्टि की प्यास। हमें कोई दृष्टि दे, कोई हमें देखे, उसकी दृष्टि हम पर पड़ जाए। अब तक मनुष्यों से आंखें मिलाते रहे, अब भगवान की जब तक दृष्टि नहीं पड़ती तब तक जागरण नहीं होता है। सोचो वो समय अब आया है, हम यहां आए हैं भगवान की दृष्टि लेने। किसी व्यक्ति ने आकर किसी गांव में ये कह दिया कि अभी अभी मुझे भगवान के साक्षात्कार हुए, कितना उसको ऊंचा मानेंगे, कितना ऊंचा समझा जाएगा। भगवान जिसको कोई भी नहीं जानता, द मोस्ट मिस्टीरियस फिगर इन द हिस्ट्री, वो है क्या, उसका परिचय क्या। वो परिचय यहां मिला और उसके बाद उसकी दृष्टि। ये प्यास है आत्मा की कि वो भगवान से आंखें मिलाना चाहती है, वो हमको देखे, वो हमको समझे, वो हमको जाने, हम उसको समझे, उसको देखे, उसको जाने। और ये केवल कल्पना नहीं है, होगा, हो सकता है, और यहां वो होगा। वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आकर दृष्टि दे, पर अनुभव होगा जरूर। आत्मा की प्यास है दृष्टि की। 15वां पॉइंट, आत्मा की प्यास है संतुष्टता की। और जैसे कहा, इस संसार की कोई भी वस्तु आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती, आत्मा को तृप्त केवल अध्यात्म ही कर सकता है। वो यात्रा चालू करनी है। तृप्त संतुष्टः सततम योगी है अर्जुन। योगी वो है जो निरंतर संतुष्ट रहता है, जीवन की कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, कितनी भी खतरनाक, कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां क्यों ना हो, परंतु तृप्ति, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट का संबंध बाहर की वस्तुओं से नहीं है, वो स्वभाव है। आज व्यक्ति दुखी है, उसके पास घर नहीं है, बेचैन है, दुखी है, अतृप्त है, सोचता है मुझे घर बनाना है, बहुत पैसा कमाता है, 5 साल दिन रात मेहनत करके एक दिन घर बन जाता है। घर बनने के बाद सोचता है अब घर किस लिए बना रहे, ताकि सुखी रहूं, तृप्त रहूं, संतुष्ट रहूं, चैन से रहूं। घर तो बन गया, परंतु ये 5 साल की अतृप्ति और बेचैनी के संस्कार अब साथ में चल रहे हैं, हैबिट्स। घर है बट ही इज रेस्टलेस, क्योंकि आदत पड़ गई है बेचैन रहने की, चिंतित रहने की, दुखी रहने की, उदास रहने की। वो घर बनने के बाद भी दुखी है, वो वहीं रहा। तृप्ति क्या है, संतुष्टता क्या है? आत्मा कहीं पर भी तृप्ति नहीं पा सकती जब तक वो अंदर नहीं जाती, एकांत में नहीं जाती, मौन में नहीं जाती। ये 2 मार्ग है, एकांत और मौन, चुप हो जाए, बहुत आवाज कर ली, साइलेंस। सबसे बड़ा स्पीच इज साइलेंस। सबसे शक्तिशाली भाषा अगर संसार में कोई है तो वो कौन सी है? मौन। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु चिन्ह संशया। गुरु कुछ बोल भी नहीं रहा है, चुप बैठा है, शिष्य बैठे हैं हजारों लाखों, उनके मन में प्रश्न है, प्रश्न पूछ नहीं रहे, पर इसका मौन व्याख्यानम शिष्यस्तु चिन्ह संशया, उनके संशय मौन से ही दूर हो रहे। एंड साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ सोल। रिटर्न बैक, शब्दों में बहुत रहे, सुबह से लेकर रात तक आवाज आवाज आवाज, चैटर चैटर चैटर, स्टॉप, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। बहुत भटक लिए डिजिटल नगरी में, डिजिटल नगरी और उसकी गलियां, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया। स्टॉप, थोड़ी देर के लिए अंदर जाना है। लास्ट पॉइंट, पवित्रता। आत्मा की प्यास किसकी है? प्यूरिटी की। किसी मंदिर में चले जाओ, अच्छा लगता है वहां? क्यों क्यों अच्छा लगता है? प्यूरिटी है। कोई भजन कोई गीत सुनो, क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसमें प्योर वाइब्रेशंस है। और किसी बस स्टेशन, किसी एयरपोर्ट, किसी सुपरमार्केट, सुपर मॉल में जाके खड़े रहो, किस तरह के वाइब्रेशंस है वहां के वाइब्रेशंस, और अभी जहां बैठे यहां के वाइब्रेशंस में जमीन आसमान का अंतर है। क्यों क्यों यहां क्या है? कईयों ने ऐसा अनुभव किया होगा, यहां आते ही अभी किसी से बात नहीं की, अभी किसी का लेक्चर नहीं सुना, पर मन शांत हो गया है। क्यों? सक कर लिया जैसे किसी ने स्ट्रेस को, टेंशन को। क्यों? यहां एक पावर है और वो पावर है पवित्रता। यहां एक अद्भुत शक्ति काम कर रही है और वो शक्ति है द पावर ऑफ ब्रह्मचर्य। इतने सारे नवयुवक और इतनी सारी बहनें एक साथ रह रहे हैं, परंतु सब में प्यूरिटी ठूस ठूस के भरी है। जीवन परिवर्तन हुआ है, शायद इन 16 प्यास में से कोई एक प्यास उनकी यहां पूर्ण हुई थी और इस व्रत को धारण कर लिया, और जीवन में वो दिव्यता, वो पवित्रता, वो शक्ति है। तो ऐसी ये 16 प्रकार की प्यास है अनंत की। सबसे पहली बताई प्रेम, मिलन, परमात्मा छत्र छाया, परमात्मा साथ, परमात्मा मदद। उसके बाद में ज्ञान, गुण, शक्तियां, वरदान, दृष्टि, सेवा, दुआएं, अलौकिक सुख, अलौकिक खुशी, संतुष्टता और पवित्रता। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे। लास्ट मेडिटेशन। जीवन में बहुत संघर्ष है, परंतु हमारी जीत होगी, इस विश्वास से यहां पर जाना है। जो बातें बताई ये हो सकता है शुरुआत में कठिन है, परंतु शुरुआत में हर चीज कठिन है, परंतु साधना से, तपस्या से कुछ भी असंभव संभव हो सकता है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सीखा न जाए। स्थिर रहना, स्टेबल रहना, अचल अडोल रहना, चित्त प्रज्ञ योगी बनना, तपस्वी बनना, संसार में रहना पर कमल फूल के समान अलिप्त, निर्लिप्त, अनटच्ड, प्रेरणा स्रोत बन जाना संसार के लिए, महान चेतना बन जाना, अपने जीवन को दिव्य बना देना। कल्पतरु चला कल्पतरुंचे आरव, चेतना चिंता मणिन से गाव बन जाना, ये संभव है। तो इसी दृढ़ संकल्प के साथ यहां से जाना है। अच्छा, ओम शांति। सब स्थिर बैठेंगे।
कहां तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहां तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, नए फूल कल डगर में खिलेंगे उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे कितना हवा का हो झोंका मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे कहां तक ये मन को अंधेरे छलेंगे उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे